नमस्कार स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के संक में, और इस अंक में खबरों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खेल पत्रकार खेल विशेषज्ञ उत्तरा गणेशन। उत्तरा स्वागत है आपका।
धन्यवाद नवीन।
आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खेल खबरों पर। भारत सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में अब भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग श्रृंखला सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की महिला पहलवान काजल और श्रुतिका स्वर्ण पदक की दौड़ में है। जेमी स्मिथ की शतकीय पारी की बदौलत श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड मजबूत स्थिति में पहुंच गया है, और ट्यूनिशिया की ओंस जैबो चोट के कारण अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। उत्तराज सुबह से सभी खेल प्रेमियों को और खासकर बात करें फुटबॉल प्रेमियों को, सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप के रिजल्ट का इंतजार रहा था। भारत सेमीफाइनल में पहुंच गए खबर आ रही है। काठमांडू में आज एक रोमांचक मुकाबला खेला गया था जिसमें भारत ने मालदीव को 1-0 से हरा दिया। भारत का फुटबॉल को लेकर जो है एक सीमित दायरा सा है, अगर मैं बात करूं तो सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही भारत एक है, वहीं पर ही क्लब है, वहीं पर ही खेलते हैं। बहुत से टूर्नामेंट भारत में होते हैं लेकिन भारत वैश्विक स्तर पर ग्लोबल पॉइंट पर अगर देखा जाए तो नहीं पहुंच पा रहा है।
देखिए फुटबॉल जितने देशों में खेला जाता है दुनिया भर में और जिस लेवल पे खेला जाता है, हम सिर्फ भारत में रह के उसको ये नहीं सोच सकते कि आप भारत में खेलते रहें और अपने आसपास खेलते रहें सैफ लेवल पे और उसके बाद आप विश्व लेवल पे खेलने का अगर सपना रखते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। हमें बाहर निकलने की जरूरत है। हालांकि ये भी सही है कि पहले आसपास आप अपना डोमिनेशन बनाइए उसके बाद बाहर जाइए, लेकिन अगर आप सिर्फ इसी एरिया में खेलते रहेंगे और उससे खुश होते रहेंगे तो आप बाहर नहीं जा पाएंगे। बहुत सारी वजह है, अब अगर करने बैठेंगे तो उस पर पूरा दिन निकल जाएगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फुटबॉल खेला नहीं जाता है। आप दिल्ली में भी अगर निकल जाएंगे तो आपको बहुत सी गलियों में, पार्क में छोटे बच्चे बड़े बच्चे हर कोई आपको 2, 4, 5, 6, 10 के ग्रुप में भी आपको फुटबॉल खेलते नजर आ जाएंगे। लेकिन उसको एक स्ट्रक्चर देना बहुत जरूरी है, और जब हम अंडर 20 या अंडर 17 की बात करते हैं तो वहीं से आपके खिलाड़ी निकल के आते हैं। वहां उस लेवल पे जब तक आप उसको मजबूत नहीं करेंगे, प्लेयर स्काउटिंग इम्प्रूव नहीं करेंगे, टैलेंट स्काउटिंग जो होती है, और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये होती है कि आप जब एक नेशनल टीम में पहुंच जाते हैं, आपकी सीनियर टीम हो जाती है, फिर आप ये डिसाइड करते हैं कि उनको सारी सहूलियत मिलनी चाहिए, सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो खिलाड़ी को देने की जरूरत है वो हमारे यहाँ एज ग्रुप में नहीं हो पाता।
उत्तरा अगर बात करें व्यक्तिगत तौर पर बात करें तो कुछ भारतीय फुटबॉलर ऐसे हैं, अगर हम सुनील छेत्री की बात करें तो उन्होंने विश्व स्तर पर नाम भी कमाया है, लेकिन केवल एक खिलाड़ी के साथ जहां तक मैं समझता हूं कि मजबूत होने से शायद पूरी टीम मजबूत नहीं हो पाई।
देखिए टीम इवेंट में सबसे अगर कोई ऐसा खेल है जिसमें अकेला आदमी आप कहते हैं कि मैच जिता सकता है या हरा सकता है वो शायद क्रिकेट है, लेकिन उसमें भी अगर हम देखें तो कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो आपकी टीम को वो एक आध मैच जरूर जिता सकता है लेकिन वो आपको टूर्नामेंट कभी नहीं जिता पाएगा। सबसे बड़ा एग्जांपल उसका अगर हम वेस्ट इंडीज में देखें तो जो ब्रायन लारा जिस टीम में खेल रहे थे तो उनसे बड़ा शायद कभी कोई प्लेयर नहीं रहा, लेकिन उनके आसपास वो टीम नहीं थी जो उनको वर्ल्ड लेवल पर जिता सके। भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत यही है कि एक खिलाड़ी अगर किसी मैच में नहीं चलता है तो उसके आसपास और खिलाड़ी हैं जो चलते हैं। जो क्रिकेट में है वो उससे कहीं ज्यादा बाकी सारे टीम इवेंट्स में होता है, क्योंकि क्रिकेट में एक टाइम पे एक प्लेयर ही खेल रहा होता है, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर हो। फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कोई भी आप उठाएं, एक खिलाड़ी वहां खड़ा होकर कभी गेम नहीं जिताएगा।
सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप में जैसा हमने आपको बताया कि भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया, मालदीव को 1-0 से हराए, एक ही गोल हुआ भारत की ओर से, ओकरा मांगले थांग किंग पे ने एकमात्र गोल किया। ग्रुप बी में भारत शीर्ष पर पहुंच गया है और ग्रुप ए के उपविजेता बांग्लादेश से सेमीफाइनल में अब उसका मुकाबला सोमवार को होगा। और अब बात भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की। कल स्विट्जरलैंड के लुसाने डायमंड लीग में अपने अंतिम प्रयास में
उन्होंने 89.49 मीटर तक भाला फेंका और दूसरे स्थान पर रहे। नीरज का अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रयास था। नीरज उस 90 के गोल्डन टच को नहीं पहुंच पा रहे या टच नहीं कर पा रहे। हालांकि अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी मुझे नहीं लगता कि मैं वहां तक पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या सोचते कहां कुछ कमी रह रही है या ये अंतिम प्रयास माना?
देखिए मुझे नहीं लगता कहीं कोई कमी रह रही है एक तरह से
जी।
पर होता है कई बार, आप कल भी अगर हम देखें जो उन्होंने आखिरी थ्रो की थी जो 89.49 मीटर्स गई है, उसमें उनका पहला रिएक्शन यही था कि उनको लगा शायद अब ये हो गया है, लेकिन जब उन्होंने पलट के देखा कि ऑफिशियल डिस्टेंस जो है वो 90 से नीचे रह गया था और उनके एक्सप्रेशन से बहुत साफ दिख रहा था कि वो खुश नहीं है। हालांकि इनका इस सीजन का सबसे अच्छा थ्रो था, सीजन बेस्ट था, ओलंपिक के थ्रो से भी बेटर थ्रो था, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो कुछ चीजें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं। हमें यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि नीरज 100% फिटनेस पे नहीं है इस वक्त। वो ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि उनके ग्रोइन का इश्यू है और वो अपना 100 मतलब अपनी तरफ से वो दे रहे हैं, लेकिन उस लेवल पे जब आप खेलते हैं कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली सबकॉन्शियसली आपका शरीर आपको रोकता है वो पूरा का पूरा जाने से।
उत्तर कल का मुकाबला कर देखा जाए तो कल जिस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता वो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी थे, यानी कि थर्ड नंबर पे थे, तो उन्होंने भी जोर लगाया लेकिन फिर वही हमारे खिलाड़ी कहीं चूके हैं।
देखिए अगर आप उस हिसाब से देखें तो याकूब वैलेजिच जो हैं, जो चेक रिपब्लिक के हैं, जो शायद अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो शायद नीरज के सबसे आसपास पिछले 1-1.5 साल में जो आए हैं वो याकूब हैं, और उन्होंने ओलंपिक्स में 4th फिनिश किया था 88+ थ्रो करके भी। वो कल 83 भी टच नहीं कर पाए और उन्होंने 7th फिनिश किया है। तो जिस लेवल पे पहुंच गया है इंटरनेशनल में, स्पेशली ट्रैक एंड फील्ड में एथलेटिक्स, वहां पे आप ये मान के चलें कि हर मुकाबले में जब नीरज उतरेगा तो गोल्ड जीत के आएगा, तो मुझे लगता है कि ये अनफेयर होगा नीरज के साथ भी।
पर उत्तर भारतीय दर्शकों की अपेक्षाएं बहुत रहती हैं और अगर देखा जाए तो भाला फेंक प्रतियोगिता ऐसी हो गई है द मोस्ट व्यूइंग स्पोर्ट्स हो गया है हिंदुस्तान के अंदर। वहां पे मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि अक्सर हमने देखा है कि भाला फेंक खिलाड़ी फाउल करते हैं, ये जानबूझ के फाउल क्यों करा जाता है?
देखिए कई बार ये होता है जब आप अपनी थ्रो से खुश नहीं होते हैं। अब अगर हम नीरज का एग्जांपल लें, आपके हो सकता है रनअप में उस तरह से ना आया हो, आपका थ्रो ठीक से ना गया हो, आपको पता है कि शायद 70 भी नहीं जाएगी या 75 पे रुक जाएगी। अब नीरज जैसे खिलाड़ी के लिए अपने नाम के आगे एक 72-73 मार्क देखना शायद आज की तारीख में उनको खुद को भी पसंद नहीं आएगा। तो जब इस तरह की एक थ्रो होती है जो किसी से भी हो सकती है तो वो ओवरस्टेप कर जाते हैं ताकि वो उनके नाम के आगे एक एक्स दिखे। तो एक फाउल थ्रो होना बेटर है किसी भी दिन अपने नाम के आगे 70 या 72 मीटर का मार्क देखने से,
क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम ये गेम देख रहे थे, भाला फेंक प्रतियोगिता देख रहे थे, तो शायद प्रत्येक भारतीय के मन में यह सवाल जरूर आएगा कि उन्होंने अपना ये वाला थ्रो काउंट क्यों नहीं करवाया।
बिल्कुल, वो इसीलिए होता है क्योंकि आपको पता है कई बार ऐसा होता है अगर हम ओलंपिक्स की बात करें तो हाई जंप का मैं एग्जांपल अगर दूं, आप अगर नोटिस करें जिन्होंने फाइनली गोल्ड जीता था हैमिश कर जो है न्यूजीलैंड के, उनका एक क्लिप था उसी में शायद उनके पहले या दूसरे जंप में था जिसमें वो बार के नीचे से कूद के चले गए थे और काफी वो वायरल भी हो रखा था। जिनको नहीं खेल का पता है वो थोड़ा सा मजाक उड़ा रहे थे, जिनको ये भी नहीं पता कि वो कौन है कि इस तरह से भी कोई ओलंपिक्स में करता है, लेकिन वो इसीलिए है कि शायद वो उतना नहीं अपने आप कंफर्टेबल ही नहीं थे, वो रनअप नहीं था, वो ऊपर जंप ही नहीं कर पाते, तो उन्होंने बार के नीचे से ही कर दिया, वो फाउल अटेम्प्ट माना गया। लेकिन वो किसी भी दिन बेहतर है कि आप कोशिश करें, आपको चोट लगने के चांसेस हैं, आप ओवरस्टेप करते हैं और ये हर खेल में होता है स्पेशली फील्ड इवेंट्स।
उत्तर हालांकि नीरज ने टॉप 6 में रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, व्हाट डू यू थिंक कि अब वो किस स्थान तक पहुंच सकते हैं?
देखिए मुझे लगता है कि अगर वो बहुत कोशिश करें तो हो सकता है वो अभी भी 90, अभी जो दो इवेंट इस सीजन के बचे हैं ज्यूरिख और ब्रसल्स में, हो सकता है वो उसमें भी कर दें, हो सकता है वो अगले 1 साल तक ना कर पाए, लेकिन मुझे लगता है कि अब कम से कम भारतीयों को जिनको इस बात की परवाह है कि नीरज लंबा खेलेंगे उनको इस बारे में थोड़ा सा स्पेस देने की जरूरत है, क्योंकि वो कितना भी अपने आप को ये समझाएं, हम लोगों को समझाएं कि वो मेंटली नहीं प्रेशर लेते हैं, लेकिन जब आपको सुबह से रात तक 24 घंटे यही पूछा जाता है कि 90 मीटर कब मारोगे, कब मारोगे, कब मारोगे, तो इवेंचुअली वो एक इंसान है, आपके आपके दिमाग में वो चीज रह जाती है कहीं ना कहीं। और जो कंसिस्टेंसी अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि इस लेवल की इनसेन कंसिस्टेंसी किसी एथलीट की नहीं रह पाती है, कम से कम हिंदुस्तान ने ऐसा एथलीट नहीं देखा इससे पहले। 2018 के बाद आज तक मतलब 6 साल हो चुके हैं, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें नीरज ने पार्टिसिपेट किया हो और उन्होंने पोडियम में फिनिश ना किया हो। और हम ये ट्रैक एंड फील्ड की बात कर रहे हैं जहां पे हिंदुस्तान कहीं स्टैंड नहीं करता है दुनिया में।
ट्रैक एंड फील्ड की स्पर्धाओं के बाद अब आपको सीधा कुश्ती के मैट पर लिए चलते हैं। जॉर्डन के अम्मान में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के पुरुषों के फ्री स्टाइल वर्ग में फिलहाल कोई भी भारतीय पुरुष पहलवान जो है वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया। इस बीच महिलाओं के 69 किलोग्राम में काजल और 46 किलोग्राम में श्रुतिका शिवाजी पाटिल स्वर्ण पदक की दौड़ में हैं। इससे पहले अदिति कुमारी, नेहा पुलकित और मानसी राठौर ने अपने वर्गों में विश्व खिताब जीत लिए। एक इतिहास बनाया भारतीय महिला पहलवानों ने। इन चारों की अगर हम बात करें, अदिति की बात करें, नेहा और पुलकित और मानसी की बात करें, लेकिन पुरुष पहलवान कहीं नहीं टिक पाए।
देखिए, मुझे लगता है थोड़ा सा मेंस रेसलिंग पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ओलंपिक्स के लिए भी अकेले अमन ही क्वालिफाई कर पाए थे, बाकी लोग नहीं कर पाए थे। और थोड़ा सा इस बारे में मुझे लगता है कि चाहे वो फेडरेशन हो या सरकार हो या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो, थोड़ा सा उनको सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि कुश्ती में जिस तरह का हमारा इतिहास रहा है, खासकर की मेंस कुश्ती में, विमेन रेसलर्स बहुत बाद में आए हैं स्पॉटलाइट में, लेकिन जब आए तो उन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है स्पॉटलाइट पे। लेकिन जब मेंस रेसलिंग की अगर आप बात करें तो चाहे तो बहुत ज्यादा, अगर हम हैवी वेट की बात छोड़ दें, 120-130 केजी वाली छोड़ दें, तो लाइट वेट और जो मिडिल कैटेगरी है, मतलब 74 के आसपास तक की जो है कैटेगरी है, 50 से शुरू करके 74 तक की जो कैटेगरी है, उसमें हमेशा से हमारे वर्ल्ड लेवल पे रेसलर्स रहे हैं, कम से कम पिछले 20 साल में तो रहे ही रहे हैं। तो अब अगर वो नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं इनको ये देखने की जरूरत है कि क्या जो कुछ ऑफ द मैट चल रहा है उसका इन पे असर पड़ रहा है खिलाड़ियों पे, या उस तरह से ट्रायल्स की प्रॉब्लम हो रही है, कॉम्पिटिशन्स की प्रॉब्लम हो रही है, फैसिलिटीज की है प्रॉब्लम, क्या वजह है? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से सारे पहलवान हमारे खराब हो गए हैं। और अमन अकेले मेन थे, मेन्स रेसलिंग में थे वहां पे, लेकिन वो मेडल लेके वापस आए हैं। यही सवाल पूछा जा रहा था कि क्या वो रवि दहिया की जगह ले सकते हैं, उन्होंने ये प्रूव किया कि हाँ वो बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन बाकी कैटेगरीज में अगर वो चीज नहीं आ पा रही है तो मुझे लगता है बहुत सीरियसली इनको ये सोचने की जरूरत है कि ग्रास रूट्स पे क्या प्रॉब्लम आ रही है।
और अब बात क्रिकेट की। श्रीलंका ने मेजबान इंग्लैंड के साथ 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में मैनचेस्टर में अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने इंग्लैंड की ओर से 111 रन की शतकीय पारी खेली और श्रीलंका पर 122 रन की जो है बढ़त हासिल कर ली थी। इंग्लैंड ने बेहतरीन खेल रहा है इंग्लैंड, लेकिन श्रीलंका की भी हमारे को दाद देनी चाहिए कि जिस तरह से अगर भारत की सीरीज की इस तरह से बात करें तो थोड़ा मनोबल उनका बढ़ा हुआ होगा, लेकिन इंग्लैंड की धरती पर इंग्लैंड के साथ खेलना थोड़ा टफ।
इंग्लैंड की अगर हम ये कहें कि भारतीय टीम इस वक्त दुनिया के श्रेष्ठतम टीमों में से है तो गलत नहीं होगा, और इंग्लैंड की धरती पे जाके उनको हराना भारत के लिए भी कभी आसान नहीं रहा। इंग्लैंड जिस तरह की टीम है, या चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या भारत भी हो, इन टीमों को उनके घर पे हराना बहुत मुश्किल है, खासकर कि श्रीलंका जो यहाँ पे अभी T20 और ODIs खेल के गई है और अब फिर टेस्ट मैच में उतर रहे हैं। श्रीलंका में भी काफी समय से बहुत बदलाव हो रहे हैं, खिलाड़ियों के नए आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, बहुत रोटेशंस हो रही हैं, उस तरह की एक स्टेबल टीम नहीं बन पा रही है उनकी, तो एक्सपीरियंस की भी कमी है उनके पास। और जब आप एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जाते हैं तो थोड़ा टाइम जरूर आपको लगता है। आप अपने घर पे शॉर्टर फॉर्मेट खेल रहे हैं भारत के साथ, आप यहां से सीधा इंग्लैंड जा रहे हैं और आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो उनको भी सेटल होने में टाइम लगेगा।
और उत्तरा, अब चलते चलते हम अमेरिकन ओपन की भी बात कर लेते हैं। सोमवार से अमेरिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, लेकिन खबर आ रही है कि ओस जोबेर जो है ट्यूनिशिया की, वो कंधे की चोट के कारण अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। अब एक किस महिला खिलाड़ी को आप इस बार देखेंगे जो कि सेमीफाइनल फाइनल मुकाबले खेल सकती है?
देखिए, महिला टेनिस इतना ओपन है कि उसमें कोई भी फेवरेट बोलना,
कंसिस्टेंसी बहुत कम है
बिल्कुल, और जो एक बारी जीतते हैं आपको ये नहीं समझ आता है कि अगले 4 टूर्नामेंट बाद वो कहां पे मिलेंगे। मेंस टेनिस में फिर भी थोड़ी स्टेबिलिटी है, विमेन में कुछ कहना पॉसिबल नहीं है।
उत्तरा के पास अभी बहुत कुछ था बात करने को, लेकिन हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। आज के संग पे बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।